जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
कुंज बिहारी
जय गोपी जना वल्लभ गिरवर धारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवर धारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुनातीरावन चारी यमुनातीरावन चारी माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे
ప్రభుపాదకి శ్రీ గోర్నితాయికి శ్రీనాథ్ బలిదేవ సుగదా మహారాణికి శ్రీల ప్రభుపాదకి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయాముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తేర్భవతే నష్టకే ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానంజనశలాకయా చక్షురుల్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప ప్రదామహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాశం శ్రీరూపం సాగర జాతం గణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సావద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణా లలిత శ్రీ విశాఖానితాంశ నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిని నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్ దేశ తారిణి హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే భక్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరతిశే నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవింద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే భూర్తేర్మహద్వీర్యై మా పురో విభో
निर्मायसे ते यदमूषु पुरुष भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मक सुलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभाव अखिलं श्रुतिसारमेकम् श्रियः प्रतिर्यज्ञपति प्रजापति धियं पतिर्लोकपति धरापति पते गतिश्चान्दकवीष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् शतां पति तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्र विदसुमङ्गलां क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदिच्छणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकास्य शब्दो विदुनोति कल्मष तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः यं ब्रह्मा वरुडेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्ति दव्यस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदोसुरासुरगणा देवा तस्मै नमः हरे कृष्ण तो जन्माष्टमी नजदीक है आने वाला है दो दिन में तो कृष्ण भगवान कृष्ण के ही कुछ लीलाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे आज तो विशेष रूप से हम कृष्ण के एक लीला जो सबसे पहला लीला असुरों की वध की लीला जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ये असुरों की वध जो है जितना भी भगवान कृष्ण ने असुरों का जो वध किया है एक्चुअली उन लीलाओं को सुनना हम भक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बक्सिल भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो असुर जो जिनको कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने मारा ये हमारे अंदर जो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जो अनर्थ भरे हुए है वो हर एक असुर किसी न किसी अनर्थ से उसकी तुलना करते भक्ति विनोद ठाकुर। तो बहुत एक्चुअली असुरों का जो लीला है ना जो भक्ति मार्ग में जो सीरियस होने चाहते हैं जो भक्त लोग उनके भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए असुरों की दमन की लीला ना बहुत इंपॉर्टेंस लगता है बहुत मायने रखता है। आचार्य लोग इसके बारे में बहुत सारे चीज बताए हुए हैं। तो उसी असुरों के दमन की लीला में से आज हम पूतना दमन की लीला का के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो कि जिसमें 10 विषय वस्तुओं की चर्चा की गई है ना जानते हो इस कौन कौन से 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम के पता है आपको? जब किसी चीज को याद करना रहता ना तो श्लोक को याद करने का श्लोक याद करेंगे ना सब कुछ आ जाता है उनके। आपको याद है श्लोक? तो नहीं याद है? अभी अभी सब रेगुलर चर्चा चल रहा है अपना भाई। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम का जो 10 विषय वस्तु है उसके बारे में वर्णन किया गया है। आपको याद है माता जी? नहीं? अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानम पोषण उतया मन्वंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय ये 10 विषय का वस्तुओं का वर्णन जो कि श्रीमद् भागवतम में है। इन्हीं 10 विषयों का ही बहुत व्याख्या पूरा भागवतम जितने भी वैल्यूम देखते हैं इन 10 विषयों का ही विस्तार रूप है ना। कौन कौन से? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतया मन्वंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय ये 10 विषय वस्तु जो है वह श्रीमद् भागवतम में वर्णन उसका विस्तार है श्रीमद् भागवतम। तो इन 10 विषय वस्तुओं में से सबसे जो महत्वपूर्ण जब महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो कौन सा है? आश्रय आश्रय जो तत्व है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन इन दस विषयों के बारे, ये दस विषय क्या क्या है इसका डिटेल हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुछ पूतना के बारे में हम चर्चा करें तो थोड़ा संक्षिप्त रूप में हम इसको जानेंगे कि स्वर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतया मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। स्वर्ग, स्वर्ग अर्थात सृष्टि, किसके द्वारा सृष्टि? भगवान के द्वारा सृष्टि, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। दूसरा विसर्ग, विसर्ग अर्थात वह भी सृष्टि है, लेकिन किसके द्वारा वह सृष्टि है? ब्रह्मा जी के द्वारा विसर्ग। सर्ग विसर्ग स्थान, स्थान अर्थात जो 14 भुवन है, ये जो स्थान, इसके बारे में वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, भगवान किस प्रकार से पोषण करते हैं सबका, उसके बारे में वर्णन है, है ना। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतया, है ना, हमारे कर्म वासना, उतया कर्म वासना, कर्म वासना के विषय में इस भी विस्तार रूप से वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। मनवंतर मतलब भगवान के जो अलग अलग मनवंतर अवतार है उसके बारे में वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। ईशान कथा अर्थात भगवान के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के विषय में ईशान कथा, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा विस्तार रूप से श्रीमद् भागवतम में है। ईशान कथा और निरोध, निरोध अर्थात प्रलय, ये प्रलय भी कई प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं वो सारा विस्तार से हम नहीं जानेंगे। निरोध अर्थात प्रलय, मुक्ति अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना, है ना, निरोध मुक्ति और आश्रय। जो आश्रय है मतलब यह जानना कि भगवान कृष्ण ही अल्टीमेटली हमारे आश्रय है, है ना, कृष्ण ही आश्रय है और कोई व्यक्ति आश्रय प्रदान हमको पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है, कृष्ण ही आश्रय है, इस बात को जानना। तो ये जो पहले 10 में से जो पहला जो 9 विषय है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय मनवंतर ईशान कथा निरोधा मुक्ति, ये जो 9 है ये 10वें विषय को अच्छे से समझाने के लिए बताया गया है। मतलब भगवान किस प्रकार से आश्रय तत्व है, आश्रय के अंतर्गत आते, इस बात को अच्छी तरह से हम समझे इसलिए बाकी के 9 चीजें बताया गया। जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख विषय है वो कौन सा है? आश्रय है, ये प्रमुख विषय है। तो इस प्रकार से तो भगवान इस आश्रय को और अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे लीलाएं करते हैं। भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं होती है, एक नित्य लीला होता है और एक नैमित्तिक लीला होता है, है ना। जो नित्य लीला होता है ये केवल गोलोक वृंदावन धाम में नित्य रूप से चलता रहता है, है ना। भगवान कृष्ण का जो नित्य लीला है गोलोक वृंदावन, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन है, भगवान की नित्य लीला जो कंटिन्यूस चलती रहती है, है ना, उसको नित्य लीला बोलते हैं। और नैमित्तिक लीला अर्थात वो लीला कभी कभी होता है, अर्थ और एक दृष्टिकोण से ऐसा भी समझ सकते हैं कि नैमित्तिक लीला अर्थात ये जो भौम वृंदावन में अर्थात जो गोकुल वृंदावन है, इस धाम में प्रकट होकर भगवान जो लीला करते हैं उसको नैमित्तिक लीला का बोलते हैं। तो भौम वृंदावन में, इस गोकुल वृंदावन में भगवान नैमित्तिक लीला करते हैं, नित्य लीला भी वहां पे, जो नित्य लीला होता है वो चीजें भी कुछ यहाँ पे वो लीलाओं को भी करते हैं भगवान, लेकिन जो ये नैमित्तिक लीला है अर्थात ये कभी कभी होने वाली लीला है, ये गोलोक वृंदावन धाम में नहीं होता है। जहां पे नित्य लीला चलता है वहां पे असुरों की मारने की लीला भगवान नहीं करते, वहां पे नहीं असुरों की मारने की लीला। तो नैमित्तिक लीला वहां पे है, लेकिन कैसे है, लोग स्थूल रूप से नहीं है लेकिन स्वप्नवत है वो लीला, लोग स्वप्नवत देखते हैं उस लीला को, लेकिन स्थूल रूप से नहीं करते भगवान वहां पे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में किसी असुर का प्रवेश ही नहीं है, है ना, वहां पे असुर आ ही नहीं सकते हैं। तो वहां पे जो लीला चलती है भगवान की, वहां पे इन असुरों की लीला गोलोक वृंदावन धाम में नहीं है, और ये असुरों की लीला केवल इस भौम वृंदावन, जो गोकुल वृंदावन है, यहीं पे भगवान कृष्ण करते हैं। ये नैमित्तिक लीला है, ये लीला करके भगवान हम जैसे बद्ध जीवों को, हमारे अंदर जो अनर्थ है उसको निकाल कर हम उनके शरणागत हो, इस प्रकार से उनका आश्रय को ग्रहण करें, इसलिए भगवान यहाँ पे वो लीला करते थे। कितना महत्वपूर्ण है, वहां पे लीला नहीं है लेकिन यहाँ पे वो लीला होती है, भगवान कृष्ण करते हैं। तो विशेष रूप से जो भागवतम का जो आश्रय तत्व है ना, ये जितने भी असुरों को मारने की लीला है, भगवान ये बताना चाहते हैं कि कभी भी भगवान कृष्ण किसी असुर को मारे ही नहीं, मारने के साथ साथ उसको तार भी दिए, है ना। केवल मारे ही नहीं, उनके ऊपर तारना मीन्स क्या है, कृपा, है ना। तो इन इन असुरों को मार के भगवान कृष्ण यह बतलाना चाहते हैं कि जो आश्रय तत्व, पूर्ण रूप से आश्रय प्रदान करने वाला मैं ही हूं, इसलिए भगवान कृष्ण ने इन असुरों का दमन किया। तो विशेष करके या हमारा प्रश्न हो सकता है कि क्या यहाँ का जो गोकुल वृंदावन धाम है, इस भौम वृंदावन जो है, वो क्या आध्यात्मिक जगत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो असुर का प्रवेश हुआ है ना, यहाँ पे तो हुआ ना असुरों का प्रवेश। कितने असुर आया, भगवान कृष्ण कृष्ण से आने से पहले वृंदावन में शांति था, लेकिन कृष्ण में आने के बाद वृंदावन में बहुत सारे असुरों का प्रवेश आया, बहुत पुतल पुतल क्या क्या होने लगा पूरा वृंदावन में, है सारा है? तो हम सोचते ना कभी कभी हमको शांति प्राप्त हो, है ना, हम सबको भक्ति कर रहे हैं तो हमको शांति प्राप्त हो, शांति एक्चुअली शांति नहीं मिलता है ना, सेवा मिलेगा, शांति की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। कृष्ण भावनावृत में शांति की तो गारंटी है ही नहीं, सेवा प्राप्त होगा, शांति नहीं, हमने ये एडवर्टाइज नहीं करते कि शांति मिलेगा आपको, हाँ सेवा मिलेगा, इतनी सेवा मिलेगा कि पूछना हाँ? तो भगवान के वृंदावन में प्रकट होने के बाद बहुत सारे असुर लोग प्रवेश किए, ये भगवान की ही योजना थी एक्चुअली। भगवान केवल इस जो श्रीमद भागवतम का जो आश्रय तत्व है ना, इसको समझाना चाहते थे। तो अभी प्रवेश कैसे हुआ असुरों का, तो प्रवेश हुआ कि भगवान की जो लीला शक्ति है, वो लीला शक्ति इन असुरों के ऊपर कृपा किया, तब जाके वो वृंदावन में उनका प्रवेश हुआ। क्यों? क्योंकि लीला शक्ति अगर कृपा नहीं करेगी तो वो असुर आएंगे नहीं वृंदावन धाम में, और फिर उस प्रकार की कुछ लीला होगी नहीं। तो भगवान की जो लीला शक्ति है, जो उनकी लीलाओं का बहुत सारा अरेंजमेंट करती है, उनकी कृपा से ये सारे असुर वृंदावन में पहुंचे। तो इस प्रकार से विशेष करके जो भगवान का ये पूतना लीला, पूतना वध की लीला है, पूतना को सबसे जन्म के पश्चात सबसे पहला असुर को भगवान कृष्ण ने मारा, तो किसको मारा, पूतना को। कितने दिन में मारा, छठे दिन, छठी के दिन ही मार दिया। सोचिए कितना छोटा बालक रहेगा, सोचिए विचार करिए, छठवें दिन ही असुर का वध किया भगवान ने। तो विशेष करके ये जो पूतना लीला है ना, हम भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी पाद बाकी सारे असुरों की लीला जो वर्णन कर किए हुए हैं, सबसे बड़ा अगर वर्णन रूप दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, तो इस पूतना वध को दिया है, क्योंकि तो बहुत महत्वपूर्ण लीला है, हम आगे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा भूमिका जाते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है ना, जन्म हुआ वहां से, जन्म के पश्चात किस प्रकार से वसुदेव जी गोकुल लेके आ जाते हैं कृष्ण को, वहां से पुत्री को उठा के लेके जाते हैं, फिर उसके बाद कंस को जब पता चलता है कि पुत्र का जन्म हुआ है, आठवां संतान है, क्योंकि भय था आठवां संतान ही, उसको भविष्यवाणी हुई थी आठवां संतान जो कि उनको वध करेगा। तो इस प्रकार से उस भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए जैसे ही बच्चे की आवाज आए तो तुरंत ही कंस भाई भी तो तुरंत भाग के गया, और भाग के गया तो वो भी कथा जानते हैं आप लोग कि किस प्रकार से उसने वसुदेव के हाथ से बालिका को खींचकर और पटक दिया, जिससे कि वह फिर क्या रूप धारण कर लिया, देवी का रूप धारण करके, और उसने बोला हे मूर्ख कंस, तुम्हारा जो काल है वो गोकुल में प्रकट हो चुका है ना। तो कंस हड़बड़ा गया, प्रकट हो गया है। फिर उसके बाद किस प्रकार से कंस जो है उस अपने असुरों को बुलाकर मंत्रणा करता है कि क्या करना चाहिए, तो सारे असुर मित्र जो है उन्होंने क्या सलाह दिया कि गोकुल में जितने भी 10 दिन के अंदर है ना, क्योंकि अभी अभी जन्म हुआ था, 10 दिन के अंदर जितने भी बालक है सबको मार दिया जाए, तो उसमें उस कृष्ण भी रहेगा, जो भी उसका काल जो रहेगा वो भी मर जाएगा, इस प्रकार से ये भी जानते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रणा से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने पूतना को भेजा है ना। पूतना ये इसकी एक विशेषता थी कि ये बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थे है ना, उसमें पीएचडी किया हुआ था उसने बच्चों को मारने के लिए, तो बहुत एक्सपर्ट थे किस प्रकार से बच्चों को मारना है, बाल घातिनी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, बाल बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थे वो। तो पूतना को भेजा गया और पूतना हम जानते हैं कि कितना अपना रूप को बदला, बहुत सुंदर एक स्त्री का रूप धारण किया। इतना सुंदर स्त्री का रूप धारण किया उसने कि सारे ब्रजवासी जो है उनसे मोहित हो गए, है ना, कोई उनका रोक टोक नहीं किया। कौन ऐसा लगा कि स्वर्ग की कोई अप्सरा आ चुकी है। तो इस प्रकार से पूतना अपने वेश को बदलकर वो भगवान सबसे पहले नंदवन में पहुंचती है। एक्चुअली भगवान की ही ये योजना थी क्योंकि पूतना सबसे पहले मेरे पास ही आए, नहीं तो कितने बच्चों को मार देगी वो। तो भगवान की योजना थी इसलिए पूतना सबसे पहले नंद भवन में ही पहुंची, है ना। अभी तक तो उसने बालकों को मारा नहीं था, अगर हम ऐसा पिक्चर इसमें देखे रहेंगे तो वो गलत है एक्चुअली, लेकिन बालकों को मारा नहीं था। भगवान कृष्ण की योजना जो वो सीधा नंद भवन में ही आई पहले, तो कृष्ण ने अपने पास ही बुलाया उसको। तो इस प्रकार से पूतना बहुत सुंदर सा रूप धारण किया, वो बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद उसके रूप का, वो ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कृष्ण और राधा रानी का रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो पूतना का वर्णन कर, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद, मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी पाद डीओटी बने ना कौन सी लीला को सुनकर, पता है, पूतना लीला को, वो भक्त बने पूतना लीला को सुनकर, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से पूतना जो है वह नंद भवन में प्रवेश किया। तो नंद भवन में प्रवेश करने के पश्चात जैसे ही वह कृष्ण के पास गई, कोई नहीं रोका, कौन रोकेगा। जैसे कि आप जानते कि मोहिनी अवतार जब भगवान कृष्ण ने लिया तो असुर लोग देखते रह गए, कभी कोई कुछ भी जो भी तुम करोगे वो सब सही है, सब कुछ अमृत तक दे दिया, है ना, इतना मोहित हो चुके थे। ऐसा ही पूतना को देख के ना सारे ब्रजवासी, कोई यहां तक कि माता यशोदा और कोई नहीं बोला, वो सीधा हो अंदर गई कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कृष्ण को मारने की इच्छा से गई थी, काल को विष का, इसका आगे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही पूतना आनंद भवन में जब पहुंची तो कृष्ण जो कि पालने के ऊपर वह क्या बोलते हैं झूला झूल रहे थे, बच्चों को उस प्रकार सिलाते ताकि वो रोए ना, है ना, इस प्रकार रखते पालने के ऊपर। तो 6 ही दिन का बालक था वो, हाँ, कितना छोटा सा रहा होगा, 3 दिन का बालक था। लेकिन जैसे ही पूतना जब प्रवेश किया वहां पे तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी आंख को बंद कर दिया, है ना। इस आंख को बंद करने के पीछे आचार्य लोग बहुत सारे टिप्पणी, बहुत सारे टीका लिखते हैं, बहुत सारे, इतना है कि ये केवल आंख को बंद करने के ऊपर कई घंटों का क्लास हो सकता है। अगर चाहिए तो मैं केवल आंख बंद करने के ऊपर ही आज बोलता हूँ केवल। तो मैं पढ़ रहा था तो बहुत आचार्य ने इतनी टीका लिखी हुई, इतनी तरह, मैं कुछ 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 बता के फिर आगे बढ़ूंगा। कृष्ण ने आंख क्यों बंद कर लिया, तो एक आचार्य बोलते हैं कि जो पूतना जो है ना अविद्या का सूचक है। तो कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं दृष्टि इसके पास डालूंगा, अगर इसको देख लिया मैं, तो ये तो अविद्या स्वरूप है, है ना, अविद्या का मूर्तिमान स्वरूप है। हालांकि उसने क्या किया था, बहुत सुंदर रूप धारण करके आए थे लेकिन अंदर काल को विष लेके आए थे, कृष्ण को मारने की इच्छा से आई थी। लेकिन कृष्ण ने सोचा ये तो अविद्या स्वरूप है, अविद्या का ही रूप है, अगर मैं अपने नेत्र को देखूंगा तो कृष्ण सूर्य समह माया है अंधकार। तो कृष्ण सूर्य के समय है, समान है, अगर कृष्ण अपना दृष्टिपात किया तो टिक सकते थे वहां पे, नहीं टिक सकते थे। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि तो अगर वह टिक नहीं पाते, खत्म हो जाते तो फिर लीला कैसे होता। इसलिए कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। उसके बाद आचार्य और बताते हैं कि यह जो पूतना थी ना, ये बाल घातनी थी, ये बालकों को मारने में एक्सपर्ट थी, और किसी को नहीं मारते थे, बालकों को ही मारते थे, बच्चों को ही मारते थे। तो बाल घातनी होने के नाते कृष्ण ने सोचा कि बाल बच्चों को, सोचिए कि कोई अगर बच्चों को मार देता है जान से तो हम उसके विषय में कैसा विचार रखेंगे, हम सोच सकते हैं अभी कैसा विचार, उसके लिए क्या क्या अपशब्द बोलेंगे हम, इसके बारे में विचार नहीं कर सकते हैं, क्या उसके लिए घृणित वर्ड होगा वो हम वर्ड बोलेंगे, है ना, जो बालकों की हत्या करता हो। तो ये बाल घातनी होने के नाते कृष्ण ने सोचा ऐसे लोग का दर्शन करना नहीं चाहिए, इसलिए आंख बंद कर लिया। और भी आचार्य टीका, ये अलग अलग कई आचार्यों ने इसके ऊपर टीका लिखा हुआ है, ऐसा एक आचार्य ने, ऑलमोस्ट सभी आचार्यों ने टीका लिखा हुआ है, अपने अपने मंतव्य को, अपने अपने मंतव्य को रखा हुआ है। और ये एक्चुअली में श्रीमद भागवतम को हम जब गुरु और आचार्यों के माध्यम से नहीं समझेंगे ना, एक्चुअली हम भागवतम को समझ नहीं सकते हैं। हम कितना भागवतम केवल ऐसे ही पढ़ ले, लेकिन जब तक गुरु और आचार्यों की कृपा नहीं होती है ना, उनके मंतव्य को हम नहीं जानते हैं ना, तब तक हम भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते हैं, हमको भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता तब तक। तो एक आचार्य लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने इसलिए आंख बंद कर लिया क्योंकि उन्होंने सोचा था अभी गोकुल में प्रकट होऊंगा मैं तो क्या खाने के लिए मिलेगा, माखन मिश्री खाने के लिए मिलेगा, यहाँ तो प्रकट हुआ और सबसे पहले मुझे विष पान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का सोच के भगवान ने आंख बंद करके शिव जी का स्मरण करने लगे कि आप आइए कालकूट विष को लेकर आइए, आप इसको पान करिए। तो इस प्रकार से आचार्य लोग बता रहे, एक आचार्य तो लिखते है कि बाहर से वह किस रूप में आई थी, एक माता का रूप में आई थी है ना, लेकिन अंदर क्या था, विष भरा हुआ था मारने की पूतना का। बाद में मारने का कोई प्लान नहीं था, पूरा मंत्रणा करके कंस ने पहले से ही भेजा था केवल मारना है उसको, ऐसा नहीं कि उसका बाद में बुद्धि कि उसको मार देना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं था, वो केवल मारने के ही उद्देश्य से आई हुई थी। तो बाहर से यह माता का रूप है लेकिन अंदर से कालकूट विष है ना भरा हुआ है। तो ऐसी इस प्रकार की स्त्री को मैं कैसे दर्शन करूंगा, इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया है ना। कभी कभी इस प्रकार के लोग भी हमारे जीवन में आते हैं, कभी कभी लोग कितना अपने बच्चों को केयर करते हैं ना, लोगों को नहीं देते हैं, जल्दी से नहीं मिलने देते, कौन किस भाव से आया क्या मालूम है ना, पूतना बन के कोई आया हो है ना, कुछ करके चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, बालक है, छोटा पुत्र है ना, इस प्रकार के आज भी ऐसे पालन करते हैं लोग, बहुत ध्यान देते हैं विशेष करके जो छोटे बालक हो उनके लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने सोचा कि अंदर इतना बड़ा विष लेके आई हुई है वो, और ऐसी एक स्त्री रूप और माँ का रूप लेकर आई हुई है सामने, तो ऐसी स्त्री का मैं कैसे दर्शन करूं, उसको देखना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर दिया। और एक आचार्य लिखते हैं कि जो पूतना है वह भले से अंदर कालकूट विष लेकर आई थी लेकिन किस रूप में आई थी, माता के रूप में आई थी, माता के रूप में आई थी, लेकिन तो माता के रूप में आई थी इसलिए उसको एक स्त्री और एक विशेष करके जो माँ का रूप धारण करने के रहा है उसको मारना निषिद्ध है। तो मारना निषिद्ध है, कृष्ण जान रहे थे कि इसको नहीं मारना चाहिए क्यों, क्योंकि कुछ भी हो ये माँ का तो रूप लेकर आई हुई है ना, तो इसको कैसे मार सकते हैं, लेकिन फिर भी मारना तो है। इसलिए कृष्ण ने क्या आंख बंद करके क्या सोचने लगे, यह ग्वाल बालों को बाकी लोगों को मारेगी इसलिए मुझे इसे मारना है ना, ग्वाल बाल मित्रों का स्मरण करने लगे आंख बंद करके, उनको हानि पहुंचाएगी इसलिए मुझे मारना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद कर लिया है ना, क्योंकि पूतना भले से अंदर कालकूट विष के लेकर आई थी वो लेकिन माँ के रूप में आई थी। जैसे कि आप वृंदावन की लीला में देखेंगे कि एक बार कृष्ण ने अरुष्टासुर जो कि बैल के रूप में आया हुआ था वृंदावन में, उसका वध कर दिया कृष्ण ने है ना, वध कर दिया, तो राधा रानी और उनकी सहेलियां सब लोग नाराज हो गए कि तुमने, तुमको पाप लगाया, तुम हत्यारे हो, बहुत कोसने लगे उनको, तुम्हारे साथ तुमको तुम्हारा तो शकल देखना नहीं है अभी, तुम हत्या कर दिया तुमने। तो कृष्ण ने बोला समझा रहे, अरे वो असुर था, असुर था, मैंने असुर का दमन किया। तो राधा रानी ने बोला कि भले से वो असुर था लेकिन किस रूप में आया था, बैल के रूप, तुम गौ हत्या का पापी हो, तुमको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। राधा रानी कृष्ण को बोले तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा तो चेहरा भी देखना पसंद नहीं करूंगी मैं। तो कृष्ण ने फिर प्रायश्चित किया है ना, प्रायश्चित किया, ये भी लीला बहुत लंबा है उसमें नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से भले ही वो अंदर मारने की इच्छा से आई हुई थी लेकिन रूप जो था एक माँ का रूप था है ना, तो माँ का रूप होने के कारण उसको मारना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मारना पड़ेगा करके कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया कि ये ग्वाल वालों मित्रों को मारेगी अभी जाके, इसलिए मुझे इसे मारना है। तो इस प्रकार से आचार्य लोग बहुत सारे टिप्पणी देते हैं, मैंने कुछ ही उसमें से आप लोगों को बताया। तो कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया है ना, और आंखें बंद करके कि अभी इसको मारना पड़ेगा मुझे, ऐसा करके सोच के कृष्ण ने आंखें बंद किया। तो विशेष करके ये पूतना का जो लीला है हम भक्तों के जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, और उसके कुछ गुड़ विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे है ना। ये लीला तो समझ ही गए कि आई वो मारने की इच्छा से आई, फिर उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण को उठाए लेके गए और कृष्ण ने क्या किया, उसके गला को पकड़ के उसका दमन कर दिया है ना, दमन कर दिया। दमन करने के पश्चात वो अपना जैसे ही उसके स्तन पान के साथ साथ उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको प्राणों को भी पी लिया है ना, वो अपना जो फिर असली स्वरूप जो था ना उसका प्रकट हो गया। असली स्वरूप प्रकट होने के कारण बहुत विशाल, भागवत में वर्णन है कई योजन मील कितना लंबा उसका शरीर था है ना। सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत वर्णन करते हैं, तुलना करते हैं किसके किसके समान था उसका, तो हर एक पूरे अंग की तुलना करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत विशाल काय रूप में वो होकर उसका कृष्ण ने दमन कर दिया, दमन किया। और दमन के इतनी इतना बड़ा रूप था उसका कि उसको जलाने के लिए अभी कैसे जलाएंगे है ना, तो उसको टुकड़े टुकड़े पूरा ब्रजवासी मिलकर उसको टुकड़े टुकड़े काटे, पूरे बॉडी को काट के उसके बाद जलाए। और देखिए भले से कृष्ण ने उसको मारा, मैं तारने की बात इसलिए कह रहा था कि कृष्ण एक्चुअली मारते नहीं है, तारते हैं है ना। जब भी उसके बॉडी को जलाया गया, हालांकि वो असुर नहीं थे, असुर थे राक्षसी थे, लेकिन बॉडी को जब जलाया गया ना पूरे ब्रज 84 कोस में उसका सुगंध फैल गया, सुगंधित एकदम सुगंध। जनरली बॉडी जब जलता है तो सुगंध आता है कि दुर्गंध आता है? हाँ भरत को हाँ बाजू में ही रहते दुर्गंध आता है ना, बॉडी जब जलता है तो दुर्गंध आता है। उसमें भी वो राक्षसी का बॉडी था, हाँ असुरनी का बॉडी था, हलाल विष लेके वो आई थी। ऐसे का जब बॉडी को जलाया गया तो क्या निकल रहा है? सुगंध निकल रहा है ना। ये कहां तक फैल रहा था पता है? वसुदेव जी उस समय गए थे, नंद महाराज उस समय गए थे वसुदेव से मिलने के लिए है ना, पुत्र की प्राप्ति हुआ है तो मिलने के लिए गए थे है ना। तो वहां पे मिल के जब रिटर्न हो रहे थे ना, तो उनको मथुरा में ही उनको सुगंध आ रहा है कि इतना सुगंध कहां से आ रहा है। जब वो पहुंचे पास में तो पता चला कि ये तो राक्षसी को जलाया गया और उसका सुगंध है, तो सुगंध आ रहा है। एक कृष्ण ने उसको कृपा किया उसके ऊपर एक्चुअली है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है ना आश्रय तत्व के अंदर आते हैं है ना, अल्टीमेटली वही हमारे आश्रय है। तो इसके विषय में हम थोड़ा से पूतना के विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। भागवतम है क्या? ठीक है भागवतम का एक श्लोक से हम लेंगे और श्लोक को श्लोक के ऊपर ही चर्चा करेंगे। है श्लोक नहीं मिलेगा भागवतम है नहीं है? हाँ तो इंग्लिश आप लोग के लिए, मेरे लिए चाहिए श्लोक संस्कृत में ही ना, एक ले लेंगे तो फटाक। दशम स्कंद है, दशम स्कंद का पहला भाग लाइए 10:1। हो गया, एक काम करे वो ग्रुप खोले, ग्रुप में डाला मैंने श्लोक। आया नहीं? आया है? है ना, आया भरत को आ रहा है रास्ते में अभी ठीक है 1% बाकी है ना। दस कितना नंबर श्लोक है? 35 और 36। दशम स्कंद अध्याय 1 है। दशम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 35 36 दोनों है ठीक है। दसवां स्कंद अध्याय 6 और श्लोक संख्या 35 खोले, मिला सबको? ठीक है मेरे बात दोहराइए। भूतनालोक बालग्नि भूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना
राक्षसी रुधिराशना
राक्षसी रुधिराशना
जिघांसयापि हरये
जिघांसयापि हरये नम दत्वा सद्गतिम् जिघांसयापि हरये जिघांसयापि हरये नम दत्वा सद्गतिम् भूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गते किं पुनः श्रद्धया भक्त्या किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा भूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम् बोलिए कोई पाला बोलिए पाला भूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम् बोले एक माता जी बोले भूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम् अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद पूतना सदा ही मानव शिशुओं की खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था और जिन्होंने अपना स्तन पान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी जैसा कि माताएं करती रहती है। तात्पर्य पूतना को कृष्ण से कोई स्नेह न था प्रत्युत वह उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी फिर भी जाने अनजाने उसने उन्हें स्तन पान कराकर परम गति प्राप्त की किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठा युक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट करना चाहती है तो इसमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं रहता। अतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक स्तन पान कराकर आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने कृष्ण की सेवा लाड़ प्यार से के साथ और कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाया। रम्या काच उपासना ब्रजवधुम वर्गेन वा कल्पिता। समझ में आया? तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना, ये प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके श्लोक से बहुत सारे हमको शिक्षाएं प्राप्त होंगी। तो इस श्लोक के माध्यम से एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, है ना, कितने कृपालु हैं, उनके कृपा जो कृपा माधुरी जो है वो यहाँ पे प्रकट होता है ना। जैसे अभी हमने श्लोक और अनुवाद और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, कितना उनकी कृपा, कितना कृपालु है, कितना कृपा माधुरी पूरा वहां पर झलक रहा है, उनको दिख रहा है कि कृष्ण जो ऐसी एक राक्षसी को, जो राक्षसी थी लेकिन उसको कौन सा गति दिया, माता की गति दिया, है ना। प्रभुपाद जी तुलना भी करते हैं उस लोगों में, तो आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी, मैं पहले इस बात को बताया कि सुखदेव गोस्वामी विशेष करके इस पूतना लीला से, लीला को सुनकर वो भक्त बने थे, है ना। जब भगवान का वेश व्यास जी ने भगवान के गुणों का वर्णन करते गए, तो ऐसे गुणों का वर्णन करते करते तो उनको आसक्ति तो कृष्ण में हुआ ही था, लेकिन साथ साथ में सुखदेव गोस्वामी पाद को जब इस पूतना के बारे में जब बताया तो सुखदेव गोस्वामी पाद रोने लगे, कृष्ण इतनी कृपालु है, है ना। उसको मारने की इच्छा रखने वाला जो पूतना थी, इतने बड़ी राक्षसी, और उसको उन्होंने इस प्रकार का परम गति ही है ना, है ना, तो उसको माँ का रूप दे दिया, परम गति दे दिया उसको। तो इस बात को सुनकर सुखदेव गोस्वामी रोने लगे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इस लीला का बहुत विस्तार से वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी पाद में विस्तार से, इसलिए कभी कभी हम देखते हैं ना हमारे जीवन में, है ना, जो टर्निंग पॉइंट है भक्ति में आने का, कौन सा जगह है ना वहां से भक्ति में आए, तो हम उसको याद रखते हैं, है ना। कभी हम इसकी भी बोला था ना, एक क्लास होगा, केवल इसलिए होगा कि सब भक्त लोग कैसे भक्ति मार्ग में आए वो अपना अपना बताएंगे एक्सपीरियंस। हो सकता है वो क्लास 4-5 घंटे का भी हो सकता है ना, क्योंकि एक्चुअली उसमें कोई किसी को कंटाल नहीं आएगा, सबका एक्सपीरियंस सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम वो करेंगे, एक दिन क्लास न करके हम यही चर्चा करेंगे, कैसे कौन कौन भक्त बने, कैसे ड्योटी मार गए। तो ये ड्योटी जो बने थे सुखदेव गोस्वामी पाद, इसलिए वो उनका टर्निंग पॉइंट था, इसलिए उस लीला को ना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, है ना। इतना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि पूतना के बारे में बता रहे हैं कि पूतना किस प्रकार से कितना सौभाग्यशाली थी, असुरनी थी, लेकिन उसको माता की गति प्राप्त हुआ, और उसके पूरे जब, विशेष करके जब पूतना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में अगर नंद वन में जब जा रही थी ना, उसको सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं, है ना, बहुत सुंदर। जैसे मैं बोला ना, कृष्ण जैसे कृष्ण और राधा रानी की गुड़ावनी कर रहे हैं, उस प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। क्यों? क्योंकि उसके इस विशेषता को, उसको इस लीला को सुनकर ही वो भक्त बने थे। विशेष करके जब उसके बारे में ये, जब वेदव्यास जी यह वर्णन कर रहे थे, विशेष करके श्रीमद् भागवतम के कौन से, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में उद्धव और विदुर जी का संवाद है, तीसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के उद्धव जी विदुर जी को का संवाद है। तो उद्धव जी बताते हैं इस लीला को स्मरण करते, पूतना का स्मरण करते हुए उद्धव जी बताते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघंसया पाय यदप्य साध्वी लेबे गतिम धात्य चिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, है ना, कि कितना सौभाग्य उस राक्षसी पूतना का, जो कि अपने स्तन में कालकूट नामक विष को लेकर आई थी, लेकिन कृष्ण ने उसको क्या किया, माता की गति प्राप्त की। इस बात को, इसको जब सुखदेव गोस्वामी पाद इस बात को जब सुने तो रोने लगे, कितने कृपालु है कृष्ण, कितने दयावान है, कितना उनके अंदर करुणा भरा हुआ है, है ना। कृष्ण जो है ना, कभी भी एक्चुअली कृष्ण जो दंडित करते ही नहीं किसी को, है ना, केवल 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 कृपा करते हैं, है ना, कभी भी दंड नहीं देते हैं। तो इस कृपा को इस श्लोक के माध्यम से जब सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे ही सुने वो रोने लगे, है ना। विशेष करके इसके ऊपर जब राधा गोविंद महाराज ने जब इस श्लोक को जब उच्चारण करना था, उनका भी गला रुद्ध हो गया। हम कथा में उनके सुनेंगे, पूतना वध में आप देखेंगे तो महाराज बोलना ही बंद, निकल ही नहीं रहा, श्लोक भी पूरा नहीं बोल पाते हैं, एकदम गरा। तो सोचिए कितना कृपा माधुर्य इसमें दिख रहा है श्लोक में कि कृष्ण कितने कृपालु हैं, क्योंकि कपटी बनकर आई थी वो, है ना, कपट की भावना था अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि वह कृष्ण को अपना सर्वस्व सब कुछ ऑफर करने के लिए आए थे, सब कुछ देने के, उनके सरेंडर होने के लिए आए थे, वो भी नहीं था। अंदर कपट की इच्छा था, है ना, कपट मारने की इच्छा था, लेकिन भगवान का जो कृपा है एक समुद्र की तरह है, कितने कृपालु है, समुद्र की तरह तुलना किया गया, इतना कृपा भरा हुआ है भगवान के अंदर, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको उच्च गति प्राप्त दिलाया। तो मानो भगवान कृष्ण इस लीला माधुरी से अपने इस ये जो पूतना की लीला, इस लीला माधुरी से यह बताना, यह विज्ञापन कर रहे हैं, है ना। पहला ही असुर को मारे, ये विज्ञापन कर रहे हैं कि मेरी मेरे शरण में आओ तो निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार होगा। एन तेन प्रकार मन कृष्ण निवेश है, है ना। किसी भी भाव से भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए, है ना, चाहे मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो चाहे नहीं हो, है ना। भागवत बताता है कि दोनों परिस्थितियों में, चाहे आपके पास इच्छा है या चाहे नहीं है, दोनों परिस्थितियों में कृष्ण का ही शरण ग्रहण करना चाहिए। तो मानो भगवान कृष्ण विज्ञापन कर रहे हैं इस लीला को प्रस्तुत करके कि देखिए मैं कितने कृपालु हूं, है ना, हमारे शरण को ग्रहण करिए तो निश्चित रूप से कृपा करेंगे। हाँ, ये उसी प्रकार से हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक आतंकवादी जो है पार्लियामेंट के ऊपर उसने बम फेंका, है ना, और वो क्या हुआ, पकड़ा गया, है ना, बम फेंक दिया पार्लियामेंट के ऊपर, हाँ, और लेकिन क्या हुआ, पकड़ा गया वो। तो उसको पकड़ के उसके बारे में विचार विमर्श करके यार निर्णय निकाल लिया जाएगा कि कितना बड़ा तुमने अच्छा काम किया, चलो तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। संभव हो सकता है, नहीं संभव हो सकता है, कोई नहीं सकता है ऐसा। अगर ऐसा होता है, मान लो विचार मंत्रणा से ऐसा होता भी है, तो ही होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। ये कथा ये सुने कोई पढ़े स्कूल कॉलेज में, नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, याद आया, नहीं आपको भी नहीं मालूम, हमारे तो फेमस है। तो इस प्रकार से जैसे कि कोई आतंकवाद पकड़ा गया तो उसको पकड़ के ये डिसीजन लिया जाए कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, कितना बड़ा अच्छा काम किया, ये पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन कृष्ण को मारने आई थी, है ना, मारने आई थी, ऐसे को कृष्ण ने क्या किया, उच्च गति माता का पद दिया। तो कृष्ण के कितने कृपालु हम सोच सकते हैं। इसको देखकर ब्रह्मा जी जो है विचलित हो गए, है ना, इस कृपा माधुरी को देखकर ब्रह्मा जी विचलित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि पूतना माँ की गति, उसका भाई बकासुर आया तो उसको भी मुक्ति दे दिया उसको, और उसके परिवार का अगासुर आया तो उसको क्या किया, सबके सारे 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने उसकी आत्मा निकल के कृष्ण के अंदर चला गया। तो ये सारे चीज देखकर ना ब्रह्मा जी का बुद्धि काम करना बंद कर दिया, है ना, विचलित हो गए पूरा, एकदम विचलित हो गए ब्रह्मा जी, और समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है हो रहा है करके। क्योंकि कृष्ण जो है ना, मैं बोला ना, नित्य लीला में ये लीला नहीं होता है, है ना, ये केवल नैमित्तिक लीला के अंतर्गत आता है, और ये केवल भाव में वृंदावन गोकुल में ही करते हैं ये लीला कृष्ण। तो ब्रह्मा जी विचलित हो गए, है ना, चार सिर, सोचिए हम एक सिर लेके कितना सारा चीजें सोचते रहते हैं, ब्रह्मा जी को चार सिर है, हमारे ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी उनके चार सिर है, अलग अलग ब्रह्मांड है और अलग अलग ब्रह्मा जी है, सबसे कम सर वाले जो है हमारे ब्रह्मांड में है। बाकी सब में किसी को कितने हजारों हजारों सिर है ब्रह्मा जी के, हाँ, अलग अलग ब्रह्मांड में। तो हमारा जो ब्रह्मांड है ना, इसके अंदर ब्रह्मा जी है, उनको चार सिर है, एकदम विचलित हो गए। मंत्र तुमको समझा क्या, नहीं समझा। नहीं समझा, विचलित हो गए, और इसी विचलित के कारण ब्रह्मा जी विमोहित होके उनका ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, ब्रह्म विमोहन लीला में फंस गए ब्रह्मा जी। और विचलित करने वाली ही लीला है, है ना, विचलित करने वाली लीला। कितना सोचिए कि कोई असुर हमको जो मारना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको हमको मारना चाह रहा है, तो हम उसको क्या है कि नहीं, आ जाओ वेलकम, हमको मारो, हम कभी करेंगे ऐसा, हम भी उसको मारेंगे, है ना, ये भौतिक संसार का रीति है, है ना। लेकिन इस चीजों को देखकर निश्चित रूप से ब्रह्मा जी का बुद्धि खराब हो गया और विचलित हो गए। विचलित होके ही उनका जो ब्रह्म विमोहन लीला हुआ वो हुआ। लेकिन ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात जब ब्रह्मा जी शरणागत हुए कृष्ण के, जब समझ गए कि नहीं एक चोरी किया, लीला सब लोग अवगत है ना, चोरी किया लेके गए, लेकिन बाद में पता चला कि अरे वापस आके देखे तो सबके सब इधर है ना। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कहीं गोडाउन से भाग के तो नहीं आया ना इधर, तो वापस जाके देखे तो उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, एकदम परेशान हो गया। फिर सरेंडर हो गए भगवान को, जैसे अर्जुन श्लोक दिया था आपको जो है ना, जब बुद्धि खूब चलाया, जब ही देखा कि कुछ उसका निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा, तब क्या हुआ, कृष्ण को सरेंडर हुआ। तो जैसे ही ब्रह्मा जी जब सरेंडर हुए, भगवान की जब कृपा उनके ऊपर हुई, तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारे स्तुतियों को किया, स्तुति गायन करते हैं, ब्रह्म स्तुति है ना, ब्रह्म विभवन लीला में ब्रह्मा जी की स्तुतियां, ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत सारे स्तुतियां हैं भगवान के लिए। तो उसमें ब्रह्मा जी इस बात को भगवान से पूछ ही डाला पूतना के बारे में, क्योंकि वही वही लीला उनका माइंड खराब किया था। तो भगवान से पूछ ही दिया, भगवान को बोल ही दिया कि आप उनके कृपा के बारे में उनको वर्णन कर ही दिया कि आप कितने कृपालु हो। मैं नहीं, अभी तो मैं समझ गया, अभी मेरा बुद्धि तो विचलित हुआ था, लेकिन अभी मैं समझ गया मैंने कितना बड़ा अपराध किया आपके चरणों में। तो उस बात को लेकर भी वो अपनी स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं कि और वही चीज प्रभुपाद जी भी यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी उसमें बोल रहे हैं कि प्रभु आपने एक ऐसे असुरिनी को उच्च गति प्राप्त कराया, आपने माँ का रूप दे दिया, जो कि कालकूट विष लेकर आई थी आपको मारने के लिए। तो प्रभु जो ऐसी राक्षसी पूतना को आपने इतना ऊंचा पद दे दिया, तो ये जो ब्रजवासी है, जो ब्रज के लोग है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, तो उसके लिए बचा ही क्या आपके पास, क्या बचा? सोचिए, मान लीजिए वो जो आतंकवादी है ना, मान लीजिए उसको उसको इस प्रकार का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कर रहे हैं, उसके लिए क्या बचा? फिर प्रश्न होता है ना, क्या बचा उसके लिए? तो ये जो कृपा है यहाँ पे, कृपा जो भगवान के कितने कृपालु हैं, उनके उनके अंदर कितना भरा है कृपा, इस लीला से हमको जानने के बाद ब्रह्मा जी इस बात को बोल डाले कि प्रभु तो ऐसे लोगों की क्या गति होगी, है ना, क्या उसके लिए बचा? क्योंकि सर्वोच्च पद तो आपने इस असुरिनी को मार के दे दिया, तो जो आपकी भक्ति कर रहे हैं, जो 16 माला जप कर रहे हैं, जो चारों नियमों का पालन कर रहे हैं, डेली सेवा कर रहे हैं, मंगला आरती आ रहा है, तो उनके लिए तो ये विज्ञापन है भगवान कृष्ण का। ये बता रहे हैं कि जो अल्टीमेट जो आश्रय तत्व है, आश्रय कौन सा, जो विषय वस्तु का चर्चा क्या, उसमें आश्रय हो, पूर्ण आश्रय हमको कोई दे सकता है तो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने स्तुतियों में कहते हैं, और ब्रह्मा जी को और भी आगे स्तुतियां हैं, और विशेष करके इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ददाति प्रति गृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छते भुंगते भोजते च वह षड विधिम प्रीति लक्षण। ये प्रीति के 6 लक्षण को बताते हैं उपदेशामृत में, है ना, रूप गोस्वामीपाद का श्लोक। तो इसमें विशेष करके ददाति प्रति गृहणाति, ददाति इसलिए भगवान इतने जो कि आश्रय को प्रदान देने वाले, आश्रय को देने वाले हमको, आश्रय अल्टीमेट पूर्ण आश्रय भगवान कृष्ण देते हैं हमको, इसलिए जो ये ददाति प्रति गृहणाति है ना, ये भगवान के साथ करना चाहिए, है ना, ददाति प्रति गृहणाति, है ना, भगवान के साथ करना चाहिए। देखिए संसार में तो अनेक प्रकार से प्रलोभन, माया के द्वारा प्रलोभन तो आएगा ही आएगा, विचलित होते ही जाएंगे हम, है ना, बहुत सारे माया ना अलग अलग रूप में लेके बहुत सारे प्रलोभन लेके आती है ना, और जिसमें हम फंस जाते हैं, तो बहुत सारे प्रलोभन। एक बार की घटना है कि ट्रेन में बोलते हैं, ट्रेन में जो चलते हैं तो उसमें कुछ सामान को बेचने वाले लोग घूमते रहते हैं, है ना, और बहुत तेजी से बोलते हैं लोग, और बहुत अलग अलग रूप में बोलते हैं, इतना आकर्षित करने वाला शब्द को बोलते हैं। तो एक ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो ध्यान से सुनिए। तो ट्रेन में बेचने वाला जो सामान है, क्या बेच रहा था पता है? गर्मी के दिन में वो पंखा बेच रहा था। मैं ये उदाहरण किस लिए बताया अभी, तो उदाहरण किस लिए? प्रलोभन के बारे में। तो इसलिए सुनना बहुत ध्यान से, कि शुरुआत जब करते हैं ना किसी चीज का, तो सुनेंगे नहीं तो फिर उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो मैंने ये बता रहा था कि ददात प्रति गृहणाति जो भगवान के साथ हमको करना चाहिए, उनके साथ आदान प्रदान कर, क्योंकि हम उनके आश्रय को जब समझ जाते हैं ना, तो उनके साथ ही हमको आदान प्रदान करना चाहिए। तो इस संसार में बहुत सारे हमको प्रलोभन, माया रूपी प्रलोभन बहुत सारे अलग अलग रूप में आती है। वो माया के विषय में जब चर्चा करने लगा ना, तो एक प्रलोभन मुझे याद आ गया, तो वो बताने लगा मैं। तो ट्रेन में वो पंखा बेच रहा था गर्मी के दिनों में, तो पंखा बेचते वक्त क्या बोल रहा है कि बहुत बहुत मजबूत पंखा है, ले लीजिए सब लोग, गर्मी है, गर्मी ट्रेन के अंदर गर्मी था और वो बहुत पंखा झेलते 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 इस प्रकार का एडवर्टाइज कर रहा है अपना, है ना, कि ले लो 25 पैसे में, बहुत कम रेट में है, 25 पैसे में है और आप टूट जाएंगे लेकिन वो टूटेगा नहीं, है ना, इस प्रकार का सुनने के लिए ना ट्रेन में, है ना, आप टूट जाएंगे लेकिन पंखा नहीं टूटेगा और 25 पैसे में केवल। तो वो एक व्यक्ति ने सुना 25 इतना सस्ता है और वैसे भी गर्मी लग रहा है, चलो भाई लाओ, तो लिया पंखा लिया और डुलाया, एक ही बार में टूट गया एक ही बार में टूट गया। तब तक वो बेचने वाला आगे निकल गया, तो पीछे पीछे गया, तुमने बोला कि आप टूट जाएंगे लेकिन पंखा नहीं टूटेगा, तो उसने बोला कि अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, एक्चुअली वो चीज आपको पूछना चाहिए था कि वो पंखा को चलाना कैसे है, है ना, कभी कभी हम कुछ सामान जब खरीदते हैं ना तो उसके साथ कैटलॉग आता है, कैटलॉग मैनुअल आता है, उसमें बताया जाता है कि वो कैसे यूज करते हैं, चाहे मोबाइल ही क्यों ना हो, सब में आता है यूज करने के, लेकिन आजकल हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, है ना, वो मैनुअल तो खोलते ही नहीं है क्योंकि हम इतने बुद्धिमान हो गए, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मैनुअल ना खोले और वो सामान तुरंत खराब हो जाता है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो जब खराब हो जाता तब हम मैनुअल पढ़ते तो पता चलता है कि हमने ये नहीं किया इसलिए खराब हो गया। तो उस व्यक्ति ने बोला कि अरे आपने पूछा ही नहीं कि इसको चलाना कैसे है, बोला इसको चलाना मतलब पंखा है उसको मैंने चलाया, ऐसे ही तो चलाना और कैसे चलाना है, तो बोला नहीं ऐसा नहीं चलाना था इसको, एक्चुअली इसको पकड़ना और मुंह को ऐसा ऐसा करना है। तो ये इस अलग अलग रूप में एक्चुअली माया जो है ना बहुत सारे प्रलोभन हमारे जीवन में लाती रहती है, अगर उसमें हम फंसते हैं ना तो ऐसे ही रात भर करवट बदलते रहेंगे, है ना, उसमें फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक्चुअली कृष्ण के इस कृपा और कृष्ण को लेकर प्रभुपाद जी ना बहुत बहुत ज्यादा विश्वास करते थे कृष्ण के ऊपर, एक्चुअली तभी ये मोमेंट जो है इतना तेज आगे बढ़ा। प्रभुपाद जी विदेश में, विशेष करके ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया में जब वो मंदिर की स्थापना किए उसके बाद प्रभुपाद जी निकल गए तो भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन, है ना, ग्रुप में जाकर हरिनाम संकीर्तन निकाले, पहला हरिनाम संकीर्तन ऑस्ट्रेलिया में रोड पे निकले और पहला है हरिनाम संकीर्तन, इतने सारे भक्तों के साथ मिलकर सब भक्त लोग ने नगर संकीर्तन निकाला और वहां के गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको पकड़ लिया, पकड़ के जेल में डाल दिया, है ना, जेल में डाल दिया और पहला ही हरिनाम था और सब लोग जेल के अंदर चले गए। अब मंदिर में पूजा भी करने वाला कोई नहीं बचा क्योंकि कम ही लोग थे और सब लोग निकले हुए थे और गवर्नमेंट ने जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद कर दिया तो जेल के अंदर से प्रभुपाद जी को मैसेज दिया गया कि प्रभुपाद जी यहाँ हम लोग ने कीर्तन निकाला था, यहाँ की गवर्नमेंट ने हम लोग को जेल में बंद कर दिया, अभी मंदिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉयर को हमने बुलाया था तो लॉयर $7,500 मांग रहा है हम लोग को बाहर निकालने के लिए, तो इतना तो पैसा है नहीं इसलिए मंदिर तो बंद ही करना पड़ेगा अगर हमको बाहर निकलना है। तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया पता है, प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि कोई जरूरत नहीं है उस लॉयर को $7,500 देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम लोग जेल के अंदर हरिनाम करो। प्रभुपाद जी को विश्वास था कि जो हरिनाम कृष्ण हरिनाम, कृष्ण और हरिनाम में कोई अंतर नहीं है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में कृष्ण जो है अवतार लिए हुए है, तो प्रभुपाद जी को विश्वास था, उन्होंने क्या बोला कि जेल के अंदर कीर्तन करो, है ना, पॉसिबल है, कभी कभी हम मान लो जेल में बंद हो जाए तो हम केवल कंटिन्यू यही सोचेंगे कैसे इससे बाहर निकले, है ना, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे समय में वो लोग भी विचलित हो गए, ऐसे जेल में बंद है प्रभुपाद जी बोल रहे कीर्तन करो, बाहर निकालने का कोई उपाय ही नहीं बताया कि चलो हाँ ठीक है मंदिर को भेज दो, तुम लोग पहले बाहर निकालो, तुम लोग रहोगे तो एक और मंदिर बनेगा ऐसा प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि जेल के अंदर कीर्तन करो, और जेल के अंदर जब कीर्तन करने लगे वो लोग ना, तब क्या हुआ, जेल के पास जो पहरेदार है ना वो भी, है ना, संघ के प्रभाव से वो भी हरि बोल हरे कृष्णा से बोलना चालू कर दिया, है ना, क्योंकि संघ का बहुत प्रभाव होता है, जैसे कि जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर उसके साक्षात माया देवी आई थी और भक्त बन के गई, उनके शिष्य बन के चली गई माया देवी, उनको विचलित करने आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर अपने साधना में इतना निष्ठ थे कि वो माया देवी को भी शरण लेना पड़ा, उनसे कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से कीर्तन के प्रभाव से, क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम था कि कीर्तन होगा तो निश्चित रूप से कृष्ण कृपा करेंगे, ये विश्वास था। देखिए ये विश्वास होना कितनी बहुत बड़ी बात है, हम भी फिलोसफी लीला ये सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन वो विश्वास हमारे अंदर अगर बढ़ेगा तब जाके हमारी जो प्रगति है स्टेप बाय स्टेप तेजी से होगा, वो विश्वास है। प्रभुपाद जी को विश्वास था कि कृष्ण निश्चित रूप से कुछ करेंगे, और वो जो पहरेदार था वो भी हरे कृष्ण हरे बोल बोलने लगा, और एक दिन की घटना की, जब वो क्या बोलते हैं जेलर जो है ना मेन व्यक्ति जेलर, वो राउंड राउंड मारने के लिए आया कुछ दिनों के बाद। तो राउंड मारने के लिए आया तो गलती से वो पहरेदार के मुख से हरि बोल हरे कृष्णा निकल गया। तो टेंशन में वो सोचने लगा कि अरे ये हरे कृष्णा बोल रहा है। तो तुरंत कुछ नहीं सोचा, ठीक है परमात्मा के रूप में भगवान हर एक के हृदय में, कुछ नहीं सोचा उसने, सीधा गया जेल का लॉक खोला, उसको बोला अभी आप लोग जाइए, सीधा बोला। तो उसमें से एक भक्त था, भक्त लोग भी कितने भी परिस्थिति में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो करते हैं। वो बोले कि अभी तुम्हारा केस शुरू भी नहीं हुआ, छोड़ क्यों रहे। तो बोले कि देखो तुम लोग पता नहीं, तुम लोग बाहर जितना डेंजरस हो उससे ज्यादा लगता है अंदर डेंजरस हो, इसलिए आप लोग जाइए। तो कथा भले से ही कैसी भी हो, लेकिन इसमें हमको क्या सोचना है, देखिए कि प्रभुपाद जी को विश्वास, भगवान की कृपा माधुरी के ऊपर कितना प्रभुपाद जी को विश्वास था, है ना। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, वहां पे उन लोगों ने बुद्धि लगाया, लॉयर को बुलाया, इतने डॉलर देने के लिए तैयार भी थे मंदिर बन करके, लेकिन प्रभुपाद जी मना कर दिए सीधा सीधा। उनको विश्वास था कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य रचवे कृष्ण, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से जो पूतना थे वह एक असुरनी थी, लेकिन उसको भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर कृपा करके उसको मार कर उसको माता का रूप दे दिया, है ना। कृष्ण यह बताना चाह रहे हैं कि पूतना से लेके माता यशोदा तक उन्होंने आदान प्रदान किया, है ना। माता यशोदा के साथ भी आदान प्रदान किया और पूतना के साथ भी किया, और उसको उच्च गति प्राप्त करवाया, है ना। लेकिन हमारी समस्या क्या पता है, हमारी समस्या यह है कि हम बीच में है ये हमारी समस्या है, ना इधर ना उधर, हम बीच में है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों परेशान है, हम इसलिए परेशान है कि हम बीच में है ना। हम जानते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार में दो प्रकार के लोग सुखी रहते हैं, जो एक मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ा, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं मूढ़ता, जिसको कुछ पता ही नहीं है, बहुत ही इंद्रियत लिप्त है, शराब पी के गिरा हुआ है, एकदम मस्त है है ना, उसको कोई चिंता नहीं है, एकदम मस्त है अपना शराब पी के। तो मूढ़ व्यक्ति जो है वो खुश रहता है बहुत, और या तो एक जो परमहंस है जो संसार से बैराग ले चुका है वो व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम बीच में है। तो बीच में होने के नाते हम जानते हैं कि कृष्ण हमारे आश्रय तथा कृष्ण की ही आश्रय लेना चाहिए, लेकिन वो सरेंडर फिर भी हमको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो अंदर है जो कि हमको पूर्ण शरणागति नहीं ले देता है, ये हमको बाधा। तो हम जानते हैं एकदम मूड रहते हैं तो अलग बात है, और परमहंस के स्तर भी नहीं है। तो ये साधक का, साधक भक्त के साधन, ऐसा नहीं कि हम हमारे ऊपर कृपा नहीं होगा भगवान का, निश्चित रूप से जब भगवान ने ऐसे राक्षसी को इतना दिया और माता यशोदा के साथ भी इस प्रकार की लीला किया, तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो रहेगा, ये आशा है। एक्चुअली मैं बोले बोला विज्ञापन कर रहे हैं भगवान, है ना। तो एक आशाजनक लीला है एक्चुअली कि हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे भगवान, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि हमें हमेशा साधन भक्ति, जब साधना के स्तर पर रहते हैं तो निश्चित रूप से हमको बहुत सारी समस्याएं होती है, है ना। ये क्योंकि हम जो है ना, हमारे अंदर के जितने भी अनर्थ है, जितने भी कचड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इतना भरा हुआ है, तो जब साधना करते तो क्या होता है, वो निकलता है तो तकलीफ तो होगा ही ना। ये सारे एक एक करके निकलता है। विशेष करके प्रभुपाद जी बोलते थे कि कॉलेज में भी हम देखते हैं कि कॉलेज में भी जो दो प्रकार के स्टूडेंट हमेशा खुशी रहते हैं, एक तो जो है ना एग्जाम के समय दो प्रकार के लोग बहुत खुश रहते हैं। सबसे पहला जो एक टॉपर है, जो उसको कोई चिंता नहीं है, एग्जाम आया तो उसको कोई चिंता नहीं है, है ना, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल टेंशन ही नहीं एग्जाम का, क्योंकि आता है उसको सब, टॉपर है वो, है ना। एग्जाम के समय में तो अलग अलग ये एग्जाम की तैयारी जब होता है तो बाकी स्टूडेंट के साथ मित्रों के साथ मिलके केवल घूम के देखता है, ये तो मैं कर लूंगा, बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका नोट्स का झेरोक्स बटता रहता है जैसे कोई आचार्य की टीका बट रही हो, है ना, इस प्रकार से है, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो है उसको टेंशन नहीं रहता, जो कभी क्लास में गया ही नहीं, उसको भी टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जो बीच वाले है ना तो जो बीच वाले है वो सोचते हैं उसको फॉलो करें इसको करें। एक प्रभु जी बता रहे थे कि उनको कृष्णानंद प्रभु बता रहे थे, वो प्रभु जी बता रहे थे कि एक स्टूडेंट उनको मिला, बहुत टेंशन में था, इतना टेंशन में था कि जैसे कि पूरा संसार का टेंशन उसके ऊपर ही है, एकदम घूम रहा है टेंशन में इधर से उधर इधर से उधर, है ना। जब टेंशन होता है ना व्यक्ति पता नहीं कितना राउंड मारता है, किधर किधर मार मार, उसको स्वयं को भी समझ में नहीं आता है, तो घूम रहा था। प्रभु जी ने पूछा कि क्या हो गया तुमको, क्या कुछ समस्या है? उन्होंने कल एग्जाम है। अरे एग्जाम है तो इतना टेंशन, और पूरे कॉलेज का एग्जाम है, इतने सारे स्टूडेंट है, बाकी कोई टेंशन है, तुम ही घूम रहे इधर से उधर। तो बोला क्या करूं, कल एग्जाम है, बहुत टेंशन हो रहा है, और मैं कुछ तैयारी करता हूं, अंदर कुछ जाता ही नहीं। अंदर जाता ही नहीं। तो बोल प्रभु जी समझाने लगे, इतना टेंशन मत लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और दो एग्जाम कल शांति से दो एग्जाम, हो जाएगा सब, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन उसको इतना टेंशन में कहीं तो जाने लगा, तो बोले कहां जा रहे हो? बोला कि पता नहीं बहुत टेंशन हो रहा है, अब जा रहा हूँ पिक्चर देखने। वहां पे शायद कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वहां से सीखने के लिए मिलेगा शायद। तो उनको रोके रोक के उसको समझा रहे हैं, तो तभी वहां पे एक कुत्ता था, उसको देख के बोला ना, टेंशन जब व्यक्ति को होता है ना, वो उसकी हरकतें बदल जाती है एक्चुअली उसका। तो वो कुत्ते को देख कर सोचने लगा, हो कितना बिंदास सोया हुआ है। कितना बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, मुझे भी कुत्ता ही रहना चाहिए था। तो बोले क्या हो गया तुमको, इतना इतना निम्न सोच हो गया तुम्हारा? बोला हाँ, उसके जीवन में एग्जाम नहीं है, मेरे जीवन में एग्जाम है। तो इस प्रकार से देखे हर एक जगह पे ना, इस प्रकार से बताना चाह रहे हैं कि जो बीच के लोग होते हैं ना, हमेशा टेंस में रहते ही है, है ना। टॉपर को कोई समस्या नहीं, और जो क्लासरूम में गया उसको भी समस्या नहीं, क्योंकि जो भी है भगवान करेंगे, है भगवान है, जो भी करेंगे, जो चाहेंगे, चार साल से नहीं चाहे तो नहीं गया, आज अभी चाहेंगे तो जाऊंगा। इस प्रकार के उसको सोच रहा था, चलो जो करना है भगवान करेंगे। उसका केवल एक ही उद्देश्य है, कॉलेज में एंट्री उसका मारना काम है, कॉलेज में एडमिशन लेना उसका कार्य है, और कॉलेज से बाहर निकालना वो स्कूल का काम है। तो इस प्रकार के लोग जनरली, तो विशेष करके हमारी जो स्थिति ना, ये बीच वाली स्थिति है। तो हम साधन भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति करते 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 तो निश्चित रूप से हम हमारा भी कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे, निश्चित रूप से हमारी भी कुछ न कुछ गति होगा। विशेष करके जो ये पूतना, जो मैं बोला ना कि हर एक असुर किसी न किसी अनर्थ से तुलना करते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर इस पूतना का, जो पूतना रूपी असुर ने कहा, किस अनर्थ से तुलना करते हैं, पूतना को किससे तुलना करते हैं? मिथ्या गुरु, मिथ्या गुरु। क्योंकि क्योंकि संसार में हम बहुत सारे ऐसे मिथ्या गुरु है, है ना, बहुत सारे लोग गुरु बन के बैठे हुए हैं, है ना, जो कि लोगों को पथ से भ्रमित कर रहे हैं, है ना। पूतना क्या लेके आए थे, कितना सुंदर रूप था उसका, लेकिन अंदर क्या था, कपट भरा हुआ था। तो ऐसे ही संसार में बहुत सारे मिथ्या गुरु है, विशेष करके जो मिथ्या गुरु दो प्रकार के हैं, है ना। एक तो बाहर के लोग जो हमको दृष्टिगोचर होते हैं, बहुत सारे ऐसे, है ना। एक जो हमारा मन, है ना, कभी कभी हमारा मन प्रेरित करता है, ये करो ये करो, विचलित करता है ना, ये करो, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार का, है ना। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचय बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषया मना। जो मन है, अगर मन को अगर कृष्ण के चरण कमलों में भगवान के सेवा में लगा के रखेंगे तो हमको सही डायरेक्शन देगा वो, लेकिन जैसे ही वहां से हटाए ना तो निश्चित रूप से विचलित कर देगा हमको, है ना। तो ये जो हमारा मन जो है ना, विचलित मन, यह भी एक मिथ्या गुरु का प्रतीक है, जो कि हमारे अंदर ही है ना। और एक संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे मिथ्या गुरु जो कि लोगों को पथ भ्रमित कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे मिथ्या गुरु आज के समय में, है ना, और उसको लोग फॉलो भी करते हैं, है जेल में बंद है फिर भी उसकी आरती पूजा होती है, कितने सारे लोग ऐसे, है ना, कितने मिथ्या गुरु है संसार में। एक्चुअली कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि कलयुग में अगर आप सोचे कि चलो मैं कल से भगवान अपने पास मान के बैठ गए, ठीक है, और थोड़ा एडवर्टाइज कर देना, आपके पास लोग आना शुरू कर देंगे, है ना। एक कलयुग है, अपने आप को भगवान मान लिया आपने ना, तो लोग आपके फॉलोअर्स मिलेंगे ही मिलेंगे 100%, बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे। अभी सोचिए जितने भी मिथ्या गुरु उनके फॉलोअर्स कितने हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स है, ये कलयुग है ना। तो मिथ्या गुरु ये सारे क्या है, मिथ्या गुरु के प्रतीक है, है ना। मैंने एक कितना टाइम हुआ, चलेगा ना, 15 मिनट लेट आया हो, याद है मुझे तो कृष्ण किसको, आपको मैं आपको छोड़ूंगा आज हम काउंसलिंग जो है 9:30 बजे बंद करते हैं भरतपुर की वजह से, भरतपुर जितना लेट आया काउंसलिंग उतना लेट चलेगा तो थोड़ा सा खत्म कर देंगे कि खत्म कर दे अभी बंद कर दे। मैं क्या बोल रहा था, मुझे एक स्मरण आ गया, एक्चुअली कुछ सत्य घटना स्मरण आ गया, इसलिए उसको बता के खत्म करता हूँ। चलो बाकी है ना, बाकी छोड़ देते हैं, चलो बंद कर देते हैं तो मुझे ये मिथ्या गुरु के बारे में मुझे स्मरण आ गया, संगीता माता जी को भी देख के स्मरण आ गया क्योंकि उनके जैसा ही दिखते मैं मिथ्या गुरु बोल रहा था तब तक उधर नजर गया तो मेरे को याद आ गया एक्चुअली आपके लिए नहीं है लेकिन किसी का स्मरण आया तो मैं जब मीरा रोड मंदिर में था तो एक प्रोग्राम में हमको बुलाया गया है ना, हम भक्त लोग कई सारे लोग मिलके कीर्तन के लिए बुलाया गया। वो किसके प्रोग्राम में बुलाया गया पता है, आप लोग जानते होंगे, राधे माँ के प्रोग्राम में अरे हंस क्यों रहे हो, उस बहुत सुंदर है राधे तो उस प्रोग्राम बोला हम 5-6 भक्त लोग एक्चुअली वो इतनी बड़ी प्रचार, यस यस तो वो इतनी बड़ी प्रचारक है, इतने फॉलोअर्स उसके ना, विशेष करके विदेश में तो इतने फॉलोअर्स की सोच नहीं सकते उसके, बहुत, और सब बड़े बड़े लोग हैं फॉलोअर्स उसके, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो उसका जो क्या बोलते हैं, चौकी बोलते हैं ना, चौकी उसका, क्योंकि वो अपने आप को माँ का अवतार, देवी दुर्गा की अवतार मानती है। मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, शायद इसलिए तकलीफ नहीं होना चाहिए तो वो जब बॉम्बे में आई थी तो बॉम्बे में उसका जो बंगलो है ना वो बोरीवली में है, तो बोरीवली में तो उसका चौकी का ये सब किया गया था, उसमें माता का भजन सिखाते बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ा लगता है मेला। और उसका पता है, उसका दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर, आप मतलब उसका लगभग 2-3 किलोमीटर, बोरीवली स्टेशन से 2-3 किलोमीटर उसका घर है वेस्ट में, तो वहां पे लाइन लगता है 2-2 किलोमीटर तक उसके दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए इतना लाइन लगता है। और उसका और बाजू में उसके गुणगान के लिए ये होता है, वो घर के रूम के अंदर रहती है। उसने उसकी विशेषता क्या है कि वो बोलती नहीं है किसी से और जैसे अगर बोला तो फिर रूप तो प्रकट हो जाएगा ना, तो इसलिए बोलती नहीं है, केवल एक ही उसके जो पर्सनल असिस्टेंट है उसी से थोड़ा बात करती है, वो बोलती नहीं है, किसी से भी नहीं बोलती है। और हमेशा वो कैसा महाविष्णु महाविष्णु के तरह, हाँ यस यस, वो ऐसा महाविष्णु की तरह लेटी रहेगी और हाथ में त्रिशूल है उसके ऐसा, और बहुत सुंदर मुस्कान देती है, बहुत सुंदर मुस्कान देती है, मुस्कुराती रहती है। तो हमको जो चौकी में जो गाने वाला था व्यक्ति, उसने हमको बुलाया था क्योंकि वो लोग गाने वाले लोग आते हैं ना, माता का भजन गाते हैं माता की प्रसन्नता के लिए, तो उसमें से किसी कॉन्टेक्ट निकल के हमको स्टेज प्रोग्राम के लिए बुलाया था। हालांकि वो स्टेज पे नहीं थी लेकिन वो रूम के अंदर रहती है, उसके दर्शन के लिए लोग आते हैं, मंगल आरती होता है उसका, मंगल आरती होता है, सुबह सुबह इतना भीड़ आता है, जब भी वो रहती है पता चला है कि बोरीवली में है तो मंगल आरती के लिए कितना भीड़ लगता है, उसके लाइन लगता है, एक एक करके दर्शन देके निकलते हैं लोग। तो शाम का समय था, हम लोग 5 भक्त लोग गए थे कीर्तन के लिए स्टेज पे कर, अच्छा चलो हम तो जानते ही थे कि इस प्रकार का मिथ्या ये है, लेकिन वहां पे पब्लिक इतना है और स्टेज के लोग बुलाएगा तो चलो हरिनाम का कीर्तन करते हैं, वहां पर हरिनाम कीर्तन करेंगे, तो साथ में हम लोग गए थे। तो कीर्तन किए, कीर्तन करने के बाद लगभग 1-1.5 घंटा तक कीर्तन किए, और हमारे उसमें एक ब्रह्मचारी प्रभु जी थे, आदि योगी प्रभु, अभी वो दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े ड्रामास होते हैं ना, महाराज ने उनको ड्रामा का चेयरमैन बनाया हुआ है, जितने बड़े बड़े ड्रामा होते हैं ना उसके वो डायरेक्टर हैं। तो वो उस समय थे, मैं मीरा रोड में करीब 3-4 साल हो सकते हैं, नए नहीं थे वो, उनको वो कृष्ण का रोल करते हैं, कृष्ण को रोल के, कृष्ण के जैसा मुस्कुराने के लिए उन्होंने दिल्ली में जाके उन्होंने सर्जरी भी करवाया बाद में मतलब इतना रम गए उसको उसमें रहने के लिए। आप देखेंगे, सर्च करेंगे ना आदियोगी प्रभु तो देखेंगे, और एकदम महाभारत में जो कृष्ण है उसकी तरह उनका बात का नाम उसका, उन्होंने चेंज कर दिया अपने फेस को सर्जरी करा के, और बहुत बहुत सुंदर ड्रामा वगैरह करते हैं। तो क्या कहते हैं, वो कृष्ण वो कीर्तन के लिए गए थे तो वो कृष्ण बने थे वहां पे, वो कृष्ण बन के अकेले वो कृष्ण कैसा उपदेश देता ना, इस प्रकार से लोगों को थोड़ा प्रवचन कर रहे थे, और पूरा ड्रेस के साथ, क्योंकि उसको भी मौका मिला था चलो कि अपना भी रिहर्सल हो जाए वहां पे। और फिर कीर्तन करने के पश्चात वो कुर्सी में एक जगह बैठ गए, और इतनी लाइन जो है ना वो डाइवर्ट होने लगी एकदम, क्योंकि वो स्टेज पे थे और आदमी आगे था सेकंड फ्लोर पे, वो सेकंड फ्लोर पे थी और भीड़ बाहर तक था, और लोग सीढ़ी के द्वारा जा जाके उसका दर्शन करना था उसको, और यहाँ पे क्या हुआ, भीड़ डाइवर्ट होने लगी और एक कुर्सी लगा के इधर बैठ के, शुरुआत में उन्होंने स्टेज के ऊपर चल चल के बहुत सारे उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे ना, कैसे भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञान बता रहे थे दे रहे थे, तो सब लोग सुने सुने, फिर बाद में कीर्तन भी हुआ सब हुआ, तो कुर्सी पर नीचे बैठे, और जैसे ही बैठे लोग उनके पास आने लगे, लोग प्रणाम करने लगे, 500-500 रुपए 1000-1000 का नोट चरणों में डालने लगे उनके, और वो भी बैठा हुआ है ठीक है उधर से अच्छा तो इधर ही है, इसको सेवा में लगाएंगे और विश्वास नहीं करोगे, वो केवल आधा घंटे वहां पे बैठे, आधा घंटे के बाद हमको तो जाना था, लेट हो रहा, अभी मंगल आरती भी उठना है, नियम है मंगल आरती का, उठना है, नहीं जाएंगे तो फिर पनिशमेंट तो अभी रात हो गया था 10-10:30 बज गया था, तो आधा घंटा बैठे, आधा घंटा के अंदर 45,000 रुपया उनके चरणों में आया तो उसके बाद जब हम लोग का समय होगा भाई चलो अभी उठ जाते उठ जाते हैं, तो फिर हम लोग निकलने लगे हम लोग निकल रहे थे, तो किसी ने बोला कि थोड़ा प्रसाद पाके जाइए, बोला किसका प्रसाद है बोला माता जी का प्रसाद है, मतलब माता जी को भोग भी लगता है, ऐसा नहीं कि सब लोग विधिवत रूप से भोग लगाते हैं, उनको सब कुछ टेबल पर रखेंगे, थाली देंगे, सारे चीजें करेंगे, सब कुछ उनका प्रसाद होता है, उनका कृपा आशीर्वाद देते रहते हैं हमेशा एक हाथ तो ऐसा सोए, दूसरा त्रिशूल, और उससे आशीर्वाद भी देते हैं ऐसा। तो हम लोग निकल रहे थे तो उसने बोला प्रसाद, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, और हम यही सोचते थे देवी का प्रसाद होता तो ठीक था लेकिन मिथ्या देवी का प्रसाद है और प्रसाद बहुत बड़ा फिस्ट बना हुआ था, छत पे लेके गया, बोले चलो चलते है ठीक है, इसके मान रखने के लिए उसने बुलाया था कीर्तन के लिए, उसका मान रखने के लिए जाना पड़ेगा, छत पे गए सीधा है ना, लिफ्ट से छत पे चले गए, छत पे वहां पे पूरा बड़ा आयोजन था फिस्ट का, कितने कम से कम 12-15 प्रकार के आइटम्स बने हुए थे है ना, तो हम लोगों ने बहुत मना किया, रात को खाएंगे सुबह मंगल आरती नहीं उठ पाएंगे, ये वो बहुत सारे जितने भी प्लान ये था बचने का तरीका वो सब निकाला था, लास्ट में उसने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, गुलाब जामुन खा के निकल जाओ तो उसने स्वीट लेके आया, गुलाब जामुन लेके आए, दोना में दिया, बोला ठीक है अभी निकलते हैं, ऐसा दोना में लेके निकले, लेकिन खाने के लिए तो नहीं हुआ तो निकल रहे थे तो फिर से एक व्यक्ति आया, कौन जो उसका पर्सनल असिस्टेंट है, एक्चुअली चारों बाजू कैमरा लगा हुआ था, उसने ये चीज दृश्य भी देखा भी था कि लोगों ने इस प्रकार किए कीर्तन है, सारे चीजें किए, उसने सब वहां पे देखा, क्योंकि पूरा कैमरा उसके पास लगा हुआ था, सामने ही लगा हुआ था वो, फिर उस व्यक्ति ने बोला, हम तो वहां पे जाने का कोई प्लान नहीं था लेकिन जाने गए हम लोग, फिर गए तो देखे उसका जो पर्सनल रूम था जहाँ पे एक लोग को ही एंटर है, मतलब लाइन भले से लंबा है लेकिन एक लोग जाते थे, दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे, वापस बाहर निकलते, फिर दूसरा जाता था ऐसा। तो अपने पर्सनल असिस्टेंट को उसने भेजा कि उन लोग को बुला के लाओ ऐसा, तो आया बुलाने के लिए, बुला के कि माता जी बुला रही है आपको आइए आशीर्वचन लीजिए, थोड़ा आशीर्वाद लीजिए माता जी से अरे यार अभी कहाँ फंस रहे हैं, कब से प्रोग्राम खत्म हुआ लेकिन प्रसाद के चक्कर में इधर चक्कर में कितना फंसते जा रहे हैं हम लोग। फिर बाद में बहुत रिक्वेस्ट किया था, बोला ठीक है चलो, अभी बोला कि लाइन में लगना पड़ेगा क्या, नहीं लाइन में नहीं लगा, डायरेक्ट आप लोग को डायरेक्ट बुलावा है, माता का बुलावा आया डायरेक्ट बुलावा आया है। तो फिर हम लोग गए, उसमें से दो प्रभु जी नहीं आए उनको जाना ही नहीं था, दो नहीं आए, हम तीन लोग गए, नहीं दो ही लोग गए एक्चुअली, जो कृष्ण बना था वो और मैं गया साथ में तो हम दो लोग गए, ठीक है जाके मिल के आते हैं, बाकी तीन लोग गए ही नहीं, वो लोग बहुत बुलाए लेकिन गए ही नहीं, कट्टर एकदम बन गए। तो हम लोग गए और उसने उस समय ऐसा लेटी हुई थी, जैसे हम लोग अंदर गए टाइटली से वो थोड़ा उठी लेकिन फिर भी कैसा तकिया पे हो गई, पहले लेटी हुई थी वो, लेटी हुई थी और देखते ही इस प्रकार तो उठी, उठ के केवल बहुत सुंदर सा स्माइल दिया स्माइल दिया और कुछ नहीं बोला, कुछ पूछा भी नहीं, हम लोगों ने सामने से उसको बोला। फिर वो प्रभु जी जो थे, जो कृष्ण बने हुए थे और वैसे भी उस दिन बहुत वो ज्यादा उपदेश देने के मूड में ही थे, तो उन्होंने फिर बोलना चालू किया। सबसे पहला प्रश्न उनका यही था कि आप बोलते नहीं। मैं उनका पीछे से हाथ पकड़ लिया, चुप रहो अभी चलो इधर। तो वो केवल मुस्कुराई, उसका सर्वेंट आया नहीं, वो किसी से बात नहीं करते। वो खड़ा था उधर ही, सेक्रेटरी अंदर ही था, तो बोला नहीं बात नहीं करते किसी से। तो उसने जब बोला कि बात नहीं करते, तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है बात नहीं करते, कोई बात नहीं। प्रोग्राम के बाद हमको ऐसा इन्वाइट किया गया, हम लोग आए ऐसा ऐसा करके सारे चीजें। फिर उसने क्या किया कि उसका जो सर्वेंट था ना, उसको पहले से ही सारे चीजें बोल के रखा हुआ था, तो नहीं माता जी बोल रही थी ऐसा, तो उन्होंने बोला बोल रही थी, बोलती नहीं है ना। अभी मैं टेंशन, एक्चुअली महेंद्र के रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी के रूप में मैं गया था, तो मुझे टेंशन हो रहा है कि कुछ यहाँ गड़बड़ न हो जाए, और उनको तो कुछ पड़ी नहीं थी। और वो कुछ, और जैसे ही बोल रहा है कि माता जी बोल रहे थे कि आप लोग प्रोग्राम बहुत अच्छा किए, बहुत खुश है आप लोग से। तो वो बोल कैसा बोलती है, अच्छा आपको ही बोलती है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप कभी भी, आप इतना भ्रमण करते हैं मैं जानता हूँ, बहुत भ्रमण करते हैं, विदेश में भी जाते हैं, हमारा विदेश में भी मंदिर है, आप इस प्रकार से आपका प्रोग्राम होता है तो बुलाइए, कभी कभी हमारे इस्कॉन मंदिर में आइए दर्शन करने के लिए। सारे चीजें बोला, केवल स्माइल, हर एक वर्ड में केवल स्माइल देते थे, बहुत सुंदर स्माइल। तो हम लोग करीब शायद अंदर मेरे ख्याल से 10 मिनट हम लोग थे अंदर, 10 मिनट इतना देर तक किसी से मिला नहीं था, और बाहर जो लोग लाइन में खड़े थे ना, वो लोग सोचने बहुत स्पेशल लोग है लगता है। तो निकल के आए हम लोग, फिर बाद में कहाँ फंस गए यही बोलते, रास्ते में चर्चा करते 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 गए। तो इस प्रकार से कितने मिथ्या गुरु है संसार में, तो ये जो हमको पथ भ्रमित करते हैं एक्चुअली, है ना। तो इसको जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं कि मिथ्या गुरु क्या है ना, इसलिए कभी कभी ना गुरु गुरु जब चयन करने से पहले ना हमको विचार करना चाहिए, है ना, कहीं हम तो सही गुरु का चयन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, सही जगह है कि नहीं, वो परंपरा के अंतर्गत आता है कि नहीं, शास्त्रों में जो बताएगा उसके अनुसार वो है कि नहीं, तभी हम उसको चयन करना चाहिए, अन्यथा कभी भी चयन नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो पूतना का जो लीला है, विशेष करके जो मिथ्या गुरु को करता है हमारे अंदर जो अनर्थ है ना, अनर्थों का एक्चुअली नाश जो होता है होना है ना, ये अनर्थ जो है ना बहुत धीरे धीरे जाते हैं, है ना। आदो श्रद्धा तथा साधु संगोता भजन क्रिया, है ना, श्रद्धा हर व्यक्ति को रहता आ जाता है मंदिर, साधु संग भी हो जाता है, साधु लोग क्या करते हैं उसको जब माला तो पकड़ा ही देते हैं, है ना, भजन में भी लगा देते हैं, लेकिन भजन के बाद का जो स्टेज है ना अनर्थ, वो अनर्थ ना बहुत, उस अनर्थों के बारे में कोई गणना नहीं है कि वो कब निकलेगा, हो सकता है हमारा ये जिंदगी चली जाए लेकिन अनर्थ ना निकले हमारे अंदर, तो वो हमारे केवल डेडिकेशन, हमारे सीरियस कितना होते हैं उसके ऊपर ही अनर्थों का एक एक करके नाश होना है, अन्यथा नहीं। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया में थोड़े बहुत अनर्थ आते हैं, भजन क्रिया से भी व्यक्ति ऊपर उड़ जाता है, लेकिन अनर्थ में जाके फंसता है व्यक्ति, और अनर्थ जो है ना बहुत प्रकार से आते हैं उसके जीवन में, इसलिए इन असुरों का जब लीलाएं हम सुनेंगे ना, तो एक एक करके जैसे त्रिनावर्त है वो अहंकार का सूचक है, कृष्ण कभी कभी होता है ना हमारा ग्लोरी, हमारी प्रशंसा होता है तो हम चढ़ते जाते इतना ऊपर तक पहुंच जाते हैं, फिर कृष्ण क्या करते हैं, गला घोट के करते हैं सीधा उसकी पतन। तो ऐसे अलग अलग जितने भी असुरों की लीला, विशेष करके भगवान इसलिए किए कि हम बद्ध जीवों के लिए, हम पापियों का उद्धार करने के लिए इस लीला को किया भगवान ने। तो इन असुरों की लीला अगर हम सुन सुनते हैं तो हमारे अनर्थ जो है ना नष्ट होते हैं। बिना अनर्थ के नष्ट हुए बिना हम आगे का स्टेप नहीं पहुंच सकते, निष्ठा में नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम यहाँ पे विराम करते हैं, माफी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। पूतना वद की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। ग्रंथ श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।